नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, राजधानी में घरेलू और कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति नियंत्रण में। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाएगा। परिवहन मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने कहा, दिल्ली सरकार ने राजधानी के हजारों लाभार्थियों को ईवी सब्सिडी प्रदान की। सरकार लंबित मामलों का भुगतान भी प्राथमिकता के आधार पर कर रही है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 2 लाख रुपए की साइबर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जलियांवाला बाग नरसिंहार के 107वें स्मृति दिवस के अवसर पर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि राजधानी में घरेलू और कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति पर्याप्त और नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि राजधानी में लंबित बुकिंग्स को तेजी से निपटाया जा रहा है और आपूर्ति श्रृंखला मजबूत बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घरेलू एलपीजी की स्थिति पर जानकारी देते हुए बताया कि कल राजधानी में लगभग 1,11,000 से अधिक सिलेंडर की बुकिंग दर्ज की गई और तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मिलकर लगभग 1,30,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की, जो बुकिंग से काफी अधिक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राजधानी में एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता मांग से अधिक है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि दिल्ली को प्रतिदिन 19 किलोग्राम के 6,480 कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों का आवंटन किया गया है। वहीं पिछले एक सप्ताह में औसत दैनिक खपत लगभग 4,000 से अधिक सिलेंडर की रही है। इसके साथ ही उन्होंने अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे बड़े उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द पीएनजी अपनाने की सलाह दी है, जिससे दक्षता, सुरक्षा और आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने और घबराहट में आकर भंडारण न करने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की नारी शक्ति अपने दृढ़ साहस, आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर लगातार नई ऊंचाइयां छू रही हैं। नई दिल्ली में आज नारी शक्ति वंदन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत की 21वीं सदी में महिला सशक्तिकरण को समर्पित एक बड़ा निर्णय होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि संसद नया इतिहास रचने जा रही है, जिसमें भूत और भविष्य की महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा।
21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय यह है, नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है, एक ऐसा नया इतिहास जो अतीत की संकल्पनाओं को साकार करेगा, जो भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा।
महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तिकरण, आत्मसम्मान और लोकतांत्रिक भागीदारी को सुनिश्चित करता है।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारी मातृशक्ति के वर्षों के संघर्ष और साधना की लोकतांत्रिक सिद्धि का महापर्व है। यह महिलाओं के आत्मसम्मान और लोकतांत्रिक भागीदारी को सुनिश्चित करने वाला युगांतरकारी परिवर्तन है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हमें यह दृष्टि दी है जिससे आज भारत की बेटियां विकास रथ की ध्वजवाहक बन रही हैं और आपके वुमेन लेड डेवलपमेंट के विजन के साथ विश्व पटल पर अपनी नई पहचान स्थापित कर रही है।
इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये देश की लगभग 70 करोड़ महिलाओं के लिए सशक्त नेतृत्व का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से विधानसभा और संसद में 33% आरक्षण का प्रावधान केवल विधायी सुधार नहीं, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने वाला कदम है। श्रीमती गुप्ता आज राजधानी में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में शामिल हुई। मीडिया से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से देश में एक नए युग की शुरुआत हो रही है।
नए युग की शुरुआत इस वुमेन रिजर्वेशन बिल के माध्यम से हो रही है। एक पूरी शताब्दी लग गई देश की बेटियों को, देश की महिलाओं को इस दौर से गुजरने में कि जहां बेटी बचाओ से शुरू हुए थे, बेटी पढ़ाओ में आए और अब बेटी बढ़ाओ की ओर बढ़ रहे हैं। ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की प्रगति को एक अलग मुकाम पे लेके जाएगा। रहेगा। निर्णयों में सहभागिता, पॉलिसी मेकिंग में आपका उपस्थित रहना पूरे समाज को, पूरे महिला जगत को और पूरे देश को, और हर जगह विधानसभा हो, पंचायत हो, निगम हो या पार्लियामेंट हो, महिलाएं निर्णय प्रक्रिया में बैठेंगी तो वो देश के विकास में जुड़ पाएंगी।
दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने इलेक्ट्रिक वाहन ईवी पॉलिसी के दूसरे चरण के ड्राफ्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी के ईवी सब्सिडी से वंचित हजारों लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान की है और लंबित मामलों का भुगतान भी प्राथमिकता के आधार पर कर रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली ईवी पॉलिसी के ड्राफ्ट को 30 दिनों तक के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है। उन्होंने कहा कि पॉलिसी के निर्माण में इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है कि आम नागरिकों, विशेषकर मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग को अधिकतम लाभ मिले और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
पॉलिसी दिल्ली सरकार, दिल्ली ने मेरे माता, मेरे भाइयों, मेरे बहनों के लिए, अपने दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी पॉलिसी है और अभी पब्लिक डोमेन में हमने डाली है। जो हमें उसमें ऑब्जेक्शन या एडवाइस आएंगे उसे हम और देख के दिल्ली की जनता से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ईवी पे आए, आपको किसी चीज की समस्या दिल्ली सरकार नहीं होने देगी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे देहरादून में दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे के बढ़ाए गए हिस्से पर वन्य जीव गलियारे की समीक्षा करेंगे। समीक्षा के बाद श्री मोदी देहरादून के पास स्थित जय मां डाट काली मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। 213 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला एक्सेस कंट्रोल्ड दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा 12,000 करोड़ रूपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। ये गलियारा दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा के समय को 6 घंटे से घटाकर लगभग 2.5 घंटे कर देगा। परियोजना के कार्यान्वयन में निर्बाध हाई स्पीड कनेक्टिविटी को सक्षम बनाने के लिए 10 इंटरचेंज, 3 रेलवे ओवर ब्रिज, 4 बड़े पुल और 12 सुविधाओं का निर्माण भी शामिल है। प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
दिल्ली के सहकारिता मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह आज राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा आयोजित प्रथम राज्य स्तरीय क्रेडिट सम्मेलन में शामिल हुए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ संवाद कर राज्य की विकास योजनाओं को और सशक्त बनाने पर चर्चा हुई। नाबार्ड द्वारा आयोजित यह सम्मेलन वार्षिक क्रेडिट योजना प्रक्रिया का अहम हिस्सा है जो वित्तीय समावेशन और समग्र आर्थिक विकास को नई दिशा देता है। जलियांवाला बाग नरसंहार के 107वें स्मृति दिवस के अवसर पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने कहा कि वर्तमान दिल्ली विधानसभा भवन, जो उस समय इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना जाता था, वह स्वतंत्रता संग्राम की पीड़ा और प्रतिरोध का प्रत्यक्षदर्शी रहा है। उन्होंने कहा कि आज के दिन लोगों का दायित्व है कि वे इन बलिदानियों की स्मृति को सदैव जीवित रखें और उनके सपनों के भारत के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध रहें। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी कैडेट्स को डिजिटल कौशल और साइबर जागरूक करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी साइबर सुरक्षा क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया है। एनसीसी और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने आज नई दिल्ली में एक समझौता किया। एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने कहा कि देश भर के 700 से अधिक जिलों में अखिल भारतीय स्तर पर कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जाएगा। कार्यक्रम 2 चरणों में होगा। पहले चरण में 15 घंटे का ऑनलाइन साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिग्गज गायिका आशा भोसले का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। मुंबई के शिवाजी पार्क शमशान घाट पर हजारों लोगों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। अभिनेत्री आशा पारेख, संगीतकार एआर रहमान, सुदेश भोसले, तब्बू और क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, मुंबई के मेयर रितु तावड़े और एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रतिष्ठित गायिका का शव तिरंगे में लपेट कर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। समाचार कक्ष की श्रद्धांजलि।
सुविख्यात पार्श्व गायिका आशा भोंसले कल इस दुनिया से रुखसत हो गईं। उन्होंने 20 से अधिक भाषाओं में 12,000 से अधिक गीतों को अपनी आवाज दी। आशा ताई ने 1943 में गायन शुरू किया। उनके गायन में संगीत के हर रूप की झलक मिलती है, जिसमें गजल, पॉप और कैबरे शामिल हैं। उन्होंने उड़े जब जब जुल्फें तेरी और दो लफ्जों की है कहानी जैसे ना जाने कितने ही गीत दिए। आज आशा ताई भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके गीतों की समृद्ध विरासत सदा ही हमारे मन मस्तिष्क पर गूंजती रहेगी।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 2,00,000 रुपए की साइबर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से एक मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी बैंक के कस्टमर केयर अधिकारी बनकर लोगों के क्रेडिट कार्ड की जानकारी हासिल कर अनधिकृत लेन देन करते थे। मामले में आगे की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आज कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क जाम, आगजनी और पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आईं। राज्य के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा और अपर पुलिस महानिदेशक कानून और व्यवस्था अमिताभ यश लखनऊ स्थित मुख्यालय से स्थिति पर नजर रख रहे हैं। इस बीच नोएडा पुलिस ने कहा है कि औद्योगिक क्षेत्रों में स्थिति नियंत्रण में है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी ने डॉ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर आज एक विशेष पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शनी में डॉ. बाबा साहेब आम्बेडकर के जीवन, संघर्ष, विचारों और भारतीय संविधान के निर्माण में उनके अमूल्य योगदान को पुस्तकों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्रवेश और निकासी पॉइंट पर सुचारू यातायात आवागमन सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा के लिए मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आने जाने वाले यात्रियों और आम नागरिकों के लिए बाधा मुक्त आवागमन सुनिश्चित करना था। बैठक में निर्णय लिया गया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की तरफ से प्रवेश और निकासी पॉइंट पर अवैध विक्रेताओं और यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी संबंधित एजेंसियों आपस में समन्वय स्थापित कर कार्य करेंगी और ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगी कि स्टेशन आने जाने वाले यात्रियों तथा आम जनता के लिए आवागमन सुचारू, व्यवस्थित और बाधा मुक्त रहे। राजधानी में आज मौसम सामान्य रहा और तेज धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल मौसम साफ रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा राजधानी में घरेलू और कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाएगा। परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा दिल्ली सरकार ने राजधानी के ईवी सब्सिडी से वंचित हजारों लाभार्थियों को ईवी सब्सिडी प्रदान की। सरकार लंबित मामलों का भुगतान भी प्राथमिकता के आधार पर कर रही है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 2,00,000 रुपए की साइबर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जलियांवाला बाग नरसंहार के 107वें स्मृति दिवस के अवसर पर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।